ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज बलराम जी के, महाराज यू केम लेट, वी आर डिसाइडिंग व्हेदर टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, दी वोट वेंट इन फेवर ऑफ हिंदी, तो चक्रवर्ती प्रभु विल ट्रांसलेट फॉर यू, समबडी यू कैन बी देयर, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से बलराम जी के विषय में। बेसिकली हम तीन चीजों पर आज विचार करेंगे। एक तो इस धराधाम पर आने से पहले गोलोक में जो भगवान मास्टर प्लान बना रहे थे, ब्लूप्रिंट बना रहे थे अपने लीला का, उसके विषय में। दूसरा, बलराम तत्व तो क्या है, बलराम कौन है, उनके विषय में। और तीसरा, उनका यहां आविर्भाव हुआ उसके विषय में। मोटा मोटी बलराम जी के कई एक नाम हैं, जैसे बलराम, बलभद्र, हलधर, हलायुध, रोहिणी नंदन इत्यादि। बलराम जी के विषय में विशद वर्णन किया गया है महाभारत में, भागवत महापुराण में, हरिवंश पुराण में, ब्रह्मवैवत पुराण में और गर्ग संहिता में। तो हम लोग भागवत महापुराण को आधार लेकर के चलेंगे और अन्य ग्रंथों का जो बताया गया है उसको भी मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, ये मीटिंग जो हो रही है, सुखदेव गोस्वामी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं भागवत महापुराण के दसम स्कंध के दूसरे अध्याय श्लोक 5, आप यहां पर निकाल दो। हम लोग प्रारंभ करेंगे इसके पहले के अध्याय से, जहां पर कंस देवकी और वसुदेव के प्रथम पुत्र को वापिस कर दिया। जब वो प्रथम पुत्र को वापिस कर दिया, या कंस में, क्योंकि वसुदेव जी अपने वचन को रखते हुए अपने प्रथम पुत्र जिसका नाम था कृतिमंत, उसको लेकर के गए और कंस को दिए। कंस बड़ा खुश था वसुदेव जी के इस व्यवहार से और कहा, ये तो मेरा भांजा है, ब्राह्मण को मारना पाप है, आप ले जाओ, इससे कोई डर नहीं है। डर तो है 8वें संतान से। अब नारद जी के पेट में बात पच नहीं रही थी, नारद जी ने सोचा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अब तो कम साधु बन जाएगा तो भगवान आएंगे नहीं, तो कुछ और पाप करे। तो नारद जी गए कंस के पास और कहे, तुम सबसे बड़ा मूर्ख है, अरे बस देव जो बच्चा को लाया था उसको लौटा दिया तूने। कहा, क्यों, क्या तकलीफ है, वो तो हमारा कोई काल का कारण नहीं है। आर यू ट्रांसलेटिंग फॉर महाराज, महाराज अच्छा हिंदी सीख रहे हैं, तो वो हमारे काल का कारण नहीं है, उसे डरने की जरूरत क्या है। तो नारद जी ने कहा यही तुम्हारी मूर्खता है, तू विष्णु को नहीं जानता है, उसका पहला भी आठवां होता है, आठवां भी पहला होता है, एक गिनती हम लोगों में है क्रम से, एक दो तीन चार पांच, भगवान के लिए कोई क्रम है ही नहीं। तो नारद जी सिद्धांत के रूप में बिल्कुल ठीक बताए, भगवान के पास काल का दाल नहीं गलता है, हमारे पास गलता था, एक दो तीन यू नो अभी आठ बज रहा है, नौ बज रहा है, दस बज रहा है, ये सब हम लोगों के लिए, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो नारद जी उदाहरण देखिए जो ना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, कौन कहां है जैसे गिनो। तो कंस को बुद्धि आया, कहा कि हां आप बात सही कह रहे हो, और कहा कि देखो ये वसुदेव और जितने भी ये लोग हैं एक बहुत बड़ा प्लान किए हैं, ये लोग बहुत बड़ा प्लान किए हैं आपको खत्म करने के लिए। अब कंस को चढ़ा रहे हैं नारद जी कि पाप और करे, और कहा वही नहीं, ये सब लोग जितने यहां पर अवतार ले लिए हैं और जन्मे हैं, नंदादि जे ब्रजे गोपा या अमिता च जोषित विष्णयो वसुदेवाद्य देवक्या आदि यदुवंशिनः सर्वे वही देव प्रधाना उभयोरपि भारत ज्ञातव्यो बंधु सिर्दो ये चकन। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जितने लोग भी यहां पर आए हैं इस संसार में, यहां पर मथुरा में, मथुरा नहीं ब्रज में भी, ये सब देवता लोग हैं, ये देवकी वसुदेव नंद जसोदा ये सब देवता लोग हैं, अक्रूर सब देवता लोग हैं। तो मानो कंस कहता है नारद जी हमारा दिमाग अब खराब कर रहे हो, ये देवता लोग कैसे हैं और कैसे यहां पर आए, आप सब कैसे जानते हो। कहा कि लो मैं उस सभा में था जब विष्णु कह रहे थे कि तुम लोग जाओ और अलग अलग स्थान पर जन्म लो, उस समय उस सभा में मैं था और मैं सुना। तो यहां देख करके ये देखा जाए जो नारद जी बात कहे यहां पर, तो यह क्षीर सागर का बात है, ये बात क्षीर सागर के तट पर भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से, और नारद जी चाहे सुने थे। लेकिन हरिवंश पुराण भी इसको एक करता है, सपोर्ट करता है कि हाँ क्षीर सागर में। लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किए हैं कि यह जो बात थी वो गोलोक में हुई थी। भगवान क्षीर सागर पर देवताओं कह दिए थे, लेकिन योग माया को गोलोक में कहे थे, गोलोक में आदेश हुआ था। तो वही गोलोक का जो आदेश है सुखदेव गोस्वामी यहां पर वर्णन किए हैं दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या पांच में, सप्तमो वैष्णवम धामम। अच्छा वी आर गोइंग श्लोक वाइज, आई मीन सॉरी रिपीट करते हैं, रिपीट करें, ओके रिपीट करें, देर लग जाएगा, हमारे पास समय बड़ा कम है, तो मैं तो रिपीट नहीं करते हैं, बस मैं उसको बताता हूं। सप्तमो वैष्णवम धामम यमन अनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनम भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदुनाम निजनाथानाम जोगमाया समाधित समाधिसत। तो भगवान सप्तमो वैष्णवम धामम यम अनंत प्रत्यक्ष थे, जो सातवां गर्भ था देवकी का, वे भगवान के धाम यानी निवास स्थान, शयन कक्ष यानी शेष नाग हैं, और जिनको अनंता प्रत्यक्षते, जिनको अनंत कहा जाता है, वे अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। गर्भो बहु देव क्या, वे लोग वे आए हुए हैं, बहु मतलब प्रवेश किए हैं, हैं कहां पर, गर्भ गर्भ के रूप में। गर्भ के रूप में हैं कहां पर, देव क्या देवकी के गर्भ में हैं। देवकी के गर्भ होता है उदर में, पेट में। गर्भ एक वस्तु है जो कि पेट में होता है, स्थित होता है। तो यहां पर यह नहीं कहा गया है कि देवकी के उदर में वह गर्भ आया हुआ है, वो गर्भ है, यानी बलराम जी आ गए हैं। कहां पर, देवकी में। और देवक्या, और वे क्या कर रहे हैं, हर्ष शोक विवर्धनम। ये दो काम करेंगे बलराम जी, हर्ष मतलब आनंद बढ़ाने वाले, और शोक मतलब शोक। हर्ष शोक विवर्धनम कहा गया है, यानी हर्ष को भी बढ़ाएंगे और शोक को भी बढ़ाएंगे। ये नहीं कहा गया है कि हर्ष विवर्धनम शोक, ये हर्ष शोक विवर्धनम कहा गया, हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाएंगे। अब प्रश्न उठता है कैसे हर्ष को बढ़ाएंगे, तो भगवान जिनके पास आए उनके जीवन में हर्ष ही होता है। जैसे भक्त लोग, भक्तों के जीवन में कृष्ण आए हैं, प्रभुपाद जी दिए हैं हम लोगों को कृष्ण को, तो भक्त लोग आनंद में है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम। भगवान का नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान से अभिन्न है। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम को स्वीकार किया है, भगवान का जो नाम है उसका लक्षण क्या है कि आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद में वृद्धि करता है, केवल आनंद कंद। तो जो भी कृष्ण कांशस हो जाता है, जिसके गर्भ में, जिसके भीतर हृदय में भगवान आ जाते हैं, जिसके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, सब जगह जिसके चित्त में भगवान आ जाते हैं, उसका जीवन हर्षमय हो जाता है, वह व्यक्ति आनंदित हो जाता है। और शोक किसके लिए है, जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है। तो देवकी के यहां भगवान बलराम जी आए हुए हैं, तो ये हर्ष है, लेकिन अब वो जाने वाले हैं, वह होगा शोक का कारण। और ऑर्डिनरी शोक नहीं होगा, शोक का वृद्धि करने वाला होगा, मतलब महान शोक होगा। इतना कहकर के सुखदेव गोस्वामी अब भगवान के करुणा का वर्णन किए हैं श्लोक संख्या 6 में। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जंभयम् यदुनाम निजनाथानाम जोगमायाम समादिशत। भगवान अपि विश्वात्मा, यहां पर भगवान की विशेषता बताई गई है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, कहते हैं विश्वात्मा, सबके हृदय में वे विद्यमान हैं। हरिवंश पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि नारद जी जब भगवान से परिचय करा रहे थे कि देवकी कौन है, वसुदेव कौन है, कंस कौन है, कुबलिया पीर कौन है, चारु कौन है, मुष्टिक कौन है, पुतना कौन है, सबका परिचय नारद जी कराए भगवान से, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी जब बच्चे खूब खुश होते हैं ना तो खूब बोलते हैं, बाप को सब मालूम होता है लेकिन बच्चे आनंद से खूब बोलते हैं। ठीक वैसे ही नारद जी खूब बोल रहे थे। भगवान ने कहा, नारद जी मैं सब जानता हूं, मैं जानता हूं एक कंस कौन है, एक काल नेमी है, इसको मैं मारा था लेकिन वो भूला नहीं कि मैं इसको मारा हूं, इसलिए वो आया हुआ है। मैं जानता हूं कि ये पुतना कौन है, बलिराज की पुत्री है। भगवान सब बात खोल खोल कर बताए कौन क्या है। नारद जी ने ये भी कह दिया भगवान से कि देखिए भगवान, अब तक से लोग मारे गए लड़ाई में तो स्वर्ग को प्राप्त किए और फिर जन्म ले लिए, लेकिन इस बार अब ऐसा मारो कि ऊपर चले जाए लोग, फिर आए ही नहीं, दुख ना होने पावे। बड़ा सुंदर वहां पर वार्ता है नारद जी और भगवान में। तो मैं विश्व आत्मा शब्द का बात कर, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और जानते हैं सब कुछ, इसे कहते हैं भगवान अपि विश्व आत्मा। भगवान जो सर्व सामर्थ हैं, भगवान कृष्ण, वे कैसे हैं? विश्वात्मा, सबके हृदय में विद्यमान है, जो हम नहीं जानते वो भी वो जानते हैं। तो इसलिए कभी सोचना मत कि हम ऐसा चोरी करते हैं कि अल्लाह भी नहीं जानते हैं। हमको ऐसा मत कभी सोचना कि मैं ऐसा करता हूं तो प्रसन्न नहीं जानता भगवान, भले प्रसन्न न जाने लेकिन भगवान जानते हैं, क्योंकि वो विश्वात्मा है, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान अपनी विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम, भगवान समझ गए थे, भगवान आए भक्तों का रक्षा करने के लिए। भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवानि युगे युगे, भक्तों का रक्षा करने भगवान आते हैं। भगवान देवकी और वसुदेव के दुख को समझ रहे थे, भगवान अक्रूर आदि के दुख को समझ रहे थे, मथुरा वासियों के दुख को समझ रहे थे, सुरसेन को दुख को समझ रहे थे भगवान। इसीलिए कहा गया है विदित्वा, जान करके, भगवान ऐसे ही नहीं जान करके आए। क्या जान करके? कंस जम, कंस से जो जन्मा हुआ क्या है? भयम, जो कंस से उत्पन्न भय है उस भय को भगवान भली भांति जानते थे। किन किन लोगों को भय है? कहते हैं जदुनाम निज नाथानाम, उन जदुवंशियों का जिन्होंने भगवान को अपना परम आश्रय समझा था, जो भगवान जो कृष्ण जदुवंशियों के परम आश्रय हैं। निज नाथा नाम, उनके अपने नाथ हैं, भगवान इस बात को जानते थे। इस दुख से दुखी होकर के भगवान ने क्या काम किया वह श्लोक संख्या 6 से लेकर के श्लोक संख्या 15 के बीच में बताया गया है। ये जो है वह है भगवान के लीला का प्रारंभ, इस धराधाम पर आने का। पहले आदेश दे चुके थे, ठीक था, वे अंतिम आदेश दे रहे हैं जोग माया को। तो भगवान यहां पर जोग माया से कहते हैं जोग माया सम आदि सत, भगवान आदेश दिए जोग माया को सम्यक रूप से, यानी खोल खोल करके। जब ऐसा बात नहीं कि जोग माया नहीं जानती, भगवान के साथ जो रहने वाले जोग माया है, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों में से एक हैं जोग माया, उसमें प्रधान 9 शक्तियां हैं। वो जगन्नाथपुरी में जिनको भोग पल लगाया जाता है, क्या नाम? विमला देवी। विमला देवी प्रथम शक्ति हैं भगवान की, भगवान को खिलाने पिलाने का काम करती हैं, उनको ही अर्पण किया जाता है। और इसी प्रकार जोग माया उन प्रधान शक्तियों में से एक शक्ति है। तो जोग माया को भगवान सम आदिशत, भगवान सम्यक रूप से आदेश दे रहे हैं। क्या भगवान कह रहे हैं? कहते हैं गच्छम देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्याते नंद गोकुले। कहते हैं गच्छ जाओ हे देवी भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, या तुम कल्याण करने के लिए जाओ, दोनों अर्थ होगा। जो दूसरे का कल्याण करता है उसका स्वयं कल्याण होता है। हम लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जितने भक्त लोग जो प्रचार कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नामेरति जीवे दया वैष्णव सेवान या छाड़ी धर्म नाय सुन सनातन। तो जीवे दया, जीवों पर दया कर करके हम लोग प्रचार करने जाते हैं, तो जिनको हम प्रचार करते हैं उनका तो कल्याण होता है, लेकिन साथ साथ हमारा भी कल्याण होता है। क्या कल्याण होता है? पहले तो कल्याण होता है पैसा मिलता है, मिलता है ना, प्रचार करने जाते हैं, नेम फेम ग्लोरी मिलता है। जिसको ए चाहिए उसको वो मिलेगा, जिसको ए नहीं चाहिए तो दया उत्पन्न होगा उन लोगों के प्रति जो संसार में दुखी हैं, कारुणिका करुणा उत्पन्न होगा, जो कि वैष्णवों का एक गुण है। तितिक्षव कारुणिका वैष्णव जनत पर दुख दुखी, दुख उत्पन्न होगा वैष्णव में। श्री प्रभुपाद जी को कितना दुख था संसार के पति जीवों को देख करके। प्रभुपाद जी प्रार्थना जब कर रहे थे, उन्होंने वो लिखा है ना सॉन्ग, बड़ा कृपा कैला कृष्ण अध मेरा प्रति। उस सॉन्ग में आपको ये दिखाई पड़ेगा प्रभुपाद जी का कृपा। प्रभुपाद जी कैसे मैं इन लोगों को प्रचार कर सकता हूं? रजस तमो गुण सवाइर अच्छन्न, ये तो रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित हैं, मैं कैसे इनको प्रचार कर सकता हूं? लेकिन मैं करना चाहता हूं, ये प्रभुपाद जी की करुणा है। तो प्रचार करने से करुणा उत्पन्न होगा, जो कि साधुओं का एक आभूषण है। इसीलिए किसी को आश्रम में नहीं रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए, सुबह हो दोपहर हो शाम हो। अरे खाना पीना सोना तो कई एक जन्म में, कुत्ता रहोगे तो भी खाओ पियोगे सोओगे, सुअर और भेड़ रहोगे तो भी खाओ पियोगे सोओगे, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो कल्याण होता है हम लोगों का प्रचार करने से। तो भगवान कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे कल्याणी हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम कल्याण करने के लिए जा रही हो। भगवान को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, सब भगवान का सेवा करना चाहते हैं। एक होता है बपू सेवा और एक होता है वाणी सेवा। बपू सेवा मतलब साथ में रहना, और वाणी सेवा मतलब आदेश का पालन करना। तो जोग माया भगवान का बपू सेवा करती हैं, लेकिन आज भगवान उनको वाणी सेवा करा रहे हैं। बपू सेवा के लिए पहले वाणी सेवा करा रहे हैं। कहते हैं गच्छ जाओ हमसे दूर जाओ, जाओ। तो मानो जोग माया प्रभु आपके बिना कैसे रह सकती हूं, खाना पीना का सब व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर क्या होगा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें मैं कहां भेज रहा हूं? कहते हैं गोप गोभी अलंकृतम, गोप गोभी, तुम जा रही हो एक ऐसी जगह पर जहां पर गौवें हैं और वैष्णव गण हैं। गोप का अर्थ होता है गोपीवती इति गोप, जो अपने इंद्रियों से भगवान का रसास्वादन करे, भगवान का पान करे। आंख जिसका लगा हुआ है भगवान के दर्शन में, कान लगा हुआ है भगवान का कथा सुनने में, जिह्वा लगा हुआ है भगवान का नाम लेने में, ये कहलाते हैं गो। गोपीवती इंद्रियों से जो पान करते हैं वहां पर जाओ, वहां पर हैं यानी वैष्णव गण, ब्राह्मण गण। और गो भी जहां पर गायें हैं। गाय और ब्राह्मण यदि दो का कोई देखभाल करे तो पूरे जगत का कल्याण होगा। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि गाय और ब्राह्मण दोनों एक समान हैं, दोनों भगवान के प्रिय हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों अभिन्न हैं गाय और ब्राह्मण, लेकिन दोनों में से यदि गाय और ब्राह्मण दोनों पर कहीं विपत्ति आ जाए तो पहले किसका सेवा करना चाहिए? ब्राह्मण का, गो सेवा। चलो वोट हो जाता है, कितने लोग कहते हैं वैष्णव का सेवा करो? धीरे धीरे उठा रहे हैं, कंफर्म नहीं है। कितने लोग कहते हैं गाय का सेवा करें? और कितने लोग सोचते हैं कि मैं देखूंगा बाद में क्या होता है? चलो, गाय और वैष्णव दोनों के सेवा का जब बात आ जाए तो किसका सेवा करना चाहिए ये देखना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे तो उनके पास दो पत्र आया, गाय सेवा करने के लिए वैष्णव सेवा करने के लिए। उनके पास दो पत्र आया, एक जरासंध के पास से पत्र आया जहां पर राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, उनको मारने वाला था, बलि देने वाला था, और एक युधिष्ठिर महाराज के यहां से। दोनों एक साथ आया था। वैसे ही परिस्थिति आ जाए गाय और ब्राह्मण का रक्षा करने के लिए तो हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया है, त्रातव्य प्रथमा गाव। हनुमान जी पास हो गए। यदि दोनों का आ जाए तो सर्वप्रथम हमें गाय का रक्षा करना चाहिए। त्रातव्या प्रथमा गाव, त्राता त्रात्यंती द्विजाम। यदि हम गाय का रक्षा करेंगे तो वह गाय ब्राह्मण का रक्षा करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। त्रातयंती ता द्विजाम, वह उनको तारेगी। ताम मतलब ब्राह्मण को, ताता मतलब गाय, द्विजाम मतलब ब्राह्मण को, वैष्णव को। गाय उद्धार करेगी, जो सो रहे हैं उनको जगा दो। और जहां पर गाय और ब्राह्मण दोनों का सेवा होता हो, गो ब्राह्मण परित्राणे परित्रातम जगत भवे। जहां गाय और ब्राह्मण दोनों की सेवा होती है वहां पूरे संसार का सेवा हो जाता है, सबका कल्याण हो जाएगा। तो आज भारतवर्ष में और दुनिया में अकल्याण हो रहा है, सब जगह दुख ही दुख है। कारण यह है कि वैष्णव और गो माता का सेवा नहीं हो रहा है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि अभी तो कुछ कर रहे हैं बेचारे। वैष्णव और गाय ये दोनों का सेवा हो तब परित्रातम जगत भवे, जगत का कल्याण, परित्राण परित्राण होगा जगत का। तो भक्तों को तलासरी जाना चाहिए, कभी कभी जाकर के गाय का सेवा करना चाहिए। जाकर गाय का सेवा करेंगे तो आप लोग देखना रोग खत्म हो जाएगा। केवल ऐसे ही करते रहोगे ना, सब ब्लड प्रेशर शुगर हमको माधव रोग खत्म हो जाएगा। केवल गाय को पूछते रहो बस, और कुछ नहीं करना है, स्वस्थ रहोगे। टोली बनानी चाहिए भक्तों को, 10 भक्त हर पर एवरी वीक जाओ। कृष्णास प्रभु को हेल्प भी होगा, गाय का सेवा भी, आपका भी कल्याण होगा, बद्रे सेवा कल्याण होगा। तब भगवान ने आदेश दिया था और कहा था, गोप गोभी अलंकृतम, शोभित है ब्रज गौओं से। ये गौवे कोई समान नहीं है, ये वरुण देव की पुत्रियां हैं, ये वरुण देव की खानदान की हैं गौवें। फिर वो कथा कभी बाद में करेंगे कैसे गौओं का आविर्भाव हुआ। तो गोप गोभी अलंकृतम, गाय और गौओं से शोभित है वह गोकुल। कहते रोहिणी वसुदेवस्य भार्यः तेनंद गोकुले। अब क्लियर करते हैं कि रोहिणी नाम की एक स्त्री है जो वसुदेव की पत्नी है। आज के दिन वह नंद गोकुल में निवास कर रही है। तो मानो जोग माया कहती है, कह रही मैंने तो सुना है कि वसुदेव जी के कई एक पत्नियां थी, 12 पत्नी थी। तो आप ये कहीं का बात कर रहे हैं, और क्या हुआ? वो भी बेचारी ध्यान से सुन रही थी, कहा कि एक का और का क्या होगा, क्या हुआ? तब कहते हैं अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसन्ति ही। अन्य जितनी स्त्रियां हैं ही मतलब निश्चय ही, वो लोग निश्चय ही कंस के भय से अलग अलग जगह छिपी हुई हैं, निवास कर रहे हैं। विवरेषु विभिन्न जगह पर वे निवास कर रहे हैं। कैसे क्यों? कंस संविघ्न, हां कंस से भयभीत होकर के अलग अलग स्थलों पर वे लोग निवास कर रही है। लेकिन जो रोहिणी जी है वह नंद गोकुल में निवास करती है। वसुदेव जी के 14 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 14, जिसमें से 5 पत्नियां जो थी वो पुरुवंशी थी, कुरुवंशी थी। रोहिणी जी बहलिक जी की पुत्री थी, महाराज शांतनु के भाई थे बहलिक, यानी पितामह भीष्म के ताऊजी। नाता जोड़ा जाए तो पितामह भीष्म का एक तरफ देखा है तो बहन थी रोहिणी जी। तो बहलिक की पुत्री थी रोहिणी जी। इस प्रकार से रोहिणी प्रथम पत्नी थी वसुदेव जी की, दूसरी थी इंदिरा, तीसरी थी वैशाली, चौथी भाद्रा, पांचवी सुनामी। ये पांचों राजकुमारियां कुरुवंश से आई थी। महाराज शांतनु के भाई बहली की पुत्रियां थी। और अन्य जो पत्नियां थी 5, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रिकदेवा, उपदेवा तथा देवकी, ये 5 पुत्रियां जो थी ये देवक की थी। तो इस प्रकार से 14 और 2 जो थी सुतनु तथा बड़वा, ये 2 दासियां थी। तो इस प्रकार से वसुदेव जी की 14 पत्नियां थी, उसमें से जो बड़ी थी वे थी रोहिणी। तो रोहिणी जी का यहां पर परिचय दिया गया है। कहते रोहिणी वसुदेवस्य भार्याते नंद गोकुले, अन्याश्च कंसम विघ्ना विवरेषु वसन्ति ही। तो जो मैं कहा ठीक है, परिचय तो हो गया, बताइए हमारा काम क्या है, वहां करना क्या है जाकर के। वो आ रहा है श्लोक संख्या 8 में। कहते देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत संलिकृष्ण रोहिणिया उदरे सन्निवेशय। इस श्लोक पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बलराम जी का परिचय भगवान करा रहे हैं जोग माया से। कौन परिचय करा रहा है ये बड़ा डिपेंड करता है। बलराम जी का परिचय जोग माया से भगवान करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बलराम जी कितने महान हैं। और बड़े भाई के रूप में आए हैं, तो छोटे भाई का काम है बड़े भाई का सम्मान करना। वे कह रहे हैं देवख्या जठरे गर्भ। मैं पहले क्लियर किया था कि गर्भ किसे कहते हैं। गर्भ उदर में होता है, लेकिन यहां पर उदर ना कह करके जठरे कहा गया है। यह गर्भ कहां पर है? देवख्या जठरे। जठर समझते हो किसे कहते हैं? पुजारी बताओ जठर किसे कहते हैं? जठराग्नि का नाम नहीं सुना है? जठर वह है जहां पर अग्नि निवास करती है। जो खाते हैं ना, पचता है ना, तो जठराग्नि कहते हैं, वो जठर है। यदि कहीं बलराम जी देवकी के उदर में होते तो जलाकर राख कर देते उदर को। बलराम जी आग के समान हैं, तो उनको पानी का जीव पानी में ही रह सकता है। बलराम जी आग हैं, तो आग वाले कहां रहेंगे? आग में। इसलिए यहां पर जठरे शब्द कहा गया है। जठर में बलराम जी थे, उदर में नहीं थे। एक बात। दूसरा बात, जो उदर में होता है वह संतान होता है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, जो उदर में होता है, जठर में रहने वाला नहीं। जगन्नाथ समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा था? क्योंकि नहीं, वही तो आपको मैं बात बताऊंगा। इसको उदर में गर्भाशय, अब वो क्या मैं बताऊं, यहां पर गर्भाशय होता है जिसमें गर्भ स्थित होता है, तो उदर प्रदेश है जिसमें बहुत चीज है, जठर भी है, गर्भाशय भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बलराम जी गर्भाशय में नहीं थे। समझ जी ठीक है बोल रहे हैं, गर्भाशय में नहीं थे। कहां पर थे? जठर में। जो गर्भाशय से जन्म लेता है वह उनका संतान होगा। बलराम जी इटर्नली रोहिणी जी के संतान है, तो कुछ विशेष काम के लिए आए थे। एक आचार्य उसने वर्णन किए हैं कि बलराम जी क्यों वहां आए थे, क्या जरूरत था उनको आने का, वो मैं आगे व्याख्या करूंगा, मैं इसी में है। देखिए बलराम जी भगवान के सफाई मिनिस्टर हैं, वो क्रिया शक्ति हैं, भगवान के किसी काम में वो पहले रहते हैं, वो सब आजा करके एडवांस पार्टी वाले बलराम जी हैं, तो एडवांस पार्टी बन करके यहां पर आए हुए हैं। और देवकी के उदर में इनके पहले षडगर्भ आए थे। जो षडगर्भ थे देवता, ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था मरीचि, ये उनके पुत्र थे। लेकिन ब्रह्मा जी, दो कथाएं हैं यहां पर, तो मैं जन्माष्टमी के दिन बताऊंगा कि षडगर्भ कौन थे। तो पहले तो देवता थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के श्राप से वे लोग असुर बन गए थे, और वे जन्म लिए थे हिरण्यकश्यपु के पुत्र कालनेनी के पुत्र के रूप में। वहां भी उनको श्राप हुआ था कि वे लोग अपने पिता के हाथ से मारे जाएंगे। वही कालनेनी बाद में कंस हुआ था। अब ये सब सज्जू का बात था, अब द्वापर में कैसे आ गए? तो भगवान ऐसा व्यवस्था किए थे कि ये षडगर्भ लोग बलि महाराज के साथ में सुतर लोक में निवास करते थे, और बाद में ये लोग आए। लेकिन उनका स्वभाव था असुर का स्वभाव था, तो असुर लोग जहां रहते हैं गंदा ही रखते हैं, असुरों का स्वभाव है गंदा रखना, खा करके वहीं फेंक देना, नाक पोंछ करके वहीं डाल देना, कोपिन फेंक देना, धोती फेंक देना। जो साधु होते हैं साफ सुथरा रखते हैं, और भगवान को आना है तो सफाई सुथरा तो रखना चाहिए ना। अब चीफ मिनिस्टर आना शुरू करे, प्राइम मिनिस्टर, देखो कितना रोड साफ हो जाता है। एक बार मैं बनारस गया था, देखा रोड चकाचक था, मैंने कहा क्या बात है भाई, आज चकाचक लग रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो सफाई फाई होता है। तो ऐसे ही भगवान आने वाले हैं, सफाई कौन करेगा, तो बलराम जी को भगवान भेज दिए कि आप जाइए सफाई कीजिए। एक एक बात बड़ा समझने योग है। तो देव क्या जठरे गर्भ शेष आख्यम धाम मामकम। बलराम जी कौन है, बलराम तत्व पर थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन किया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी हैं स्वयं भगवान, जिसका वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में किया गया है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मड़यंती युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है। तो वही कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय रूप देह श्री बलराम। उनका द्वितीय देह बलराम जी हैं, फोटो कॉपी बलराम जी हैं। यहां पर फोटो कॉपी में कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन उस फोटो कॉपी में एक्शन है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करें कृष्ण सेवन। गोलोक श्वेत दीप का जब वर्णन किया गया है, तो जैसे यहां पर चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही चार तरफ से चार लोग रक्षा करते हैं। प्रथम है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो उसमें से प्रथम चतुर्भुज से जो संकर्षण है वही है बलराम जी। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण महासंकर्षण है। पंच रूप धरि करें कृष्ण सेवन, पांच रूप से वे भगवान का सेवा करते हैं। वही बात यहां का कहा गया है, शेषाख्यम एक नाम बताया गया शेष, इन्हें शेष कहा जाता है। काम क्या है, धाम माम काम, वो मेरे निवास स्थली हैं, मैं उन पर शयन करता हूं। वो निवास स्थली हैं, उन पर मैं शयन करता हूं। माम काम, वे मेरे हैं। कैसे सेवा करते हैं, अपने करे न कृष्ण लीला न सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। सृष्टि लीला में बलराम जी चार रूप से काम करते हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, तीन हुआ। और इस पृथ्वी को धारण किए हैं जो अपने हुक पर, वे हैं अनंत से। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा रो पालन, से स्वरूप करे कृष्ण विविध सेवन। एक ही स्वरूप देह भिन्न मात्र काय, आद्य काया बहु कृष्ण लीला रो सहाय। एक ही स्वरूप देह भिन्न मात्र काय, दोनों एक ही हैं, लेकिन केवल अंतर है कि एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं। इस प्रकार से महासंकर्षण, तीन विष्णु, शेषनाग और अनंत शेष, इस पर भगवान शयन करते हैं। तो इस रूप से भगवान की सेवा में वे कार्य करते हैं। तो इसलिए कहते हैं धाम माम काम। तो ठीक है, परिचय हो गया, ये आपके हैं, तो करना क्या है? कहते हैं तत् उनको सन्निकृष्ट, सन्निकृष्य, सम मतलब सम्यक रूप से, निकृष्य मतलब निकालिए, मतलब दुख भी न हो। अरे यहां कांटा चुभ जाता है, कांटा निकालते हैं तो दुख होता है, ये तो गर्भ को निकालना है। अब बताओ हमारे शरीर में किसी के पेट में पत्थरी हो गया, किसी के पेट में पत्थरी हुआ था यहां पर, ब्रह्मचारी कोई है? राधा कृष्ण को देखो, बहुत पत्थरी हो जाता है। अब कहो कि भाई जाओ पत्थरी निकालो, तो पत्थरी निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा? एनेस्थीसिया देना पड़ेगा ना, सन्निकृष्य मतलब एनेस्थीसिया देकर के निकालो, ऐसे ही खींच मत लो, निकालना है तो ऐसे निकालो ताकि रोहिणी देवगी को दर्द ना हो। तो दो काम करना है, कहते सन्निकृष्य रोहिणिया उदरे सन्निवेशया, दो काम करना है, दोनों में सम, सम मतलब सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से एक से निकालना है और दूसरे के गर्भ में, या दूसरे के गर्भ में अच्छी, इस गर्भ को स्थापित करना है, लेकिन अच्छा तरह से। इसका वर्णन किया गया है हरिवंश पुराण में, जिसको श्रीपाद जीव गोस्वामी अपने कमेंट्री में कोट किए हैं, हरिवंश पुराण वाला, कि कैसे नहीं, वो आगे कहूंगा। एनीवे तो अभी इतना ही रहेगा। ततः सन्निकृष्य, आप अच्छे तरह से उसको निकालना, देवकी को दुख ना हो। मेरी मां बनने वाली है, मां को कैसे दुख, ऑलरेडी कौन सी इतना दुख दे रहा है, मैं और कौन सी दुख क्यों दूं? इसलिए कहते हैं सन्निकृष्य। कृष्ण मतलब खींचना होता है, कृष्ण होते हैं ना, कृष्ण मतलब कृषि, खींचना, सन्निकृष्य अच्छा तरह से खींचना, दर्द ना होने पावे। और क्या करना? रोहिणिया उदरे, रोहिणी के उदर में सन्निवेशयत, एक के जठर में है भगवान बलराम जी, जठर में है, और दूसरे के उदर में स्थापित करना है। उदर का मतलब गर्भाशय हुआ, वहां पर स्थापित करना है। अब तो मानो जो मैं कहते, और आप समय है तो खत्म कर दूं पूरा प्रसंग, तो आई टेक ओनली 20 मिनट में मैक्सिमम, इफ आई गो फास्ट ट्रैक। ये भी भोजन है, ये भी प्रसाद है, हमको भी भूख लगता है, मैं भी वेटिंग करूंगा। कहते यथा यथा अहम अंश भागेन, देखो एक एक चीज को ध्यान रखो, ये बहुत क्लियर है। भगवान देवकी के पास आने वाले हैं, तो भगवान देवकी के पास संकर्षण निकल गए, अब वसुदेव का अवतार होने वाला है, वासुदेव का संकर्षण तो आ गए बलराम जी, और वासुदेव आने वाले हैं। देखिए ब्रज में जो निवास कर रहे हैं वे हैं ब्रजन नंदन श्याम सुंदर, नंद नंदन यशोदा नंदन, वो ब्रज को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है। सर्व सर्ड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्ड ऐश्वर्य परिपूर्ण जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन है वो ब्रज में निवास करते हैं। मथुरा मथुरेश जो है वो सर्ड वो ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, वो अलग है, मथुरेश कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन अलग है। इसीलिए महाप्रभु आराधना में कहते हैं कि मैं किसका आराधना करता हूं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित पासना ब्रजवधु बरगेण वा कल्पिता। मैं उन भगवान का उपासना करता हूं जो ब्रज के निवासी हैं, ब्रजेश तनय हैं, ब्रजेंद्र नंदन है, यशोदा नंदन है, उनमें और वासुदेव कृष्ण में अंतर है, उसी बात को यहां पर भगवान दर्शा रहे हैं, गोलोक धाम में कह रहे हैं। कहते हैं कि हां यथा अहम अंश भागे न, इससे क्लियर हो जाता है कि यह बात कहां हो रही थी। इसी बात को जीव गोस्वामी लिए हैं, यदि वे क्षीरोदक साहिब विष्णु कहते, ये बात कहते जोग माया को क्षीर सागर पर, तो यथा अहम अंश भागे न नहीं कह सकते थे। अंश भागे न, मेरा एक अंश पार्ट, मेरा एक पार्ट के रूप में मैं आऊंगा, तो इसका मतलब यह होल कह रहा है। और होल कहां निवास करता है? गोलोक धाम में, गोलोक निवासी हैं। तो इसका मतलब कि भगवान जो आदेश योग माया को दे रहे हैं कहां दे रहे हैं? गोलोक धाम में। इसी बात को जीव गोस्वामी प्रतिपादित किए हैं। और दूसरा बात किए कहते हैं यथा अहम अथा शब्द का अर्थ समझिए, जैसे मैं, यथा अहम अंश भागे न देवक्या पुत्रताम सुभे, हे सुभे, मैं अपने अंश से देवकी के यहां जन्म लूंगा। और यथा का दूसरा अर्थ है ठीक वैसे ही, जैसे मुझको देवकी के यहां से लाया जाएगा यशोदा के यहां, वैसे ही तुमको भी यशोदा के यहां से देवकी के यहां लाएगा। इसलिए यथा, यहां से वहां, वहां से, ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसपोर्टिंग का बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं यथा अहम अंश भागे न देवक्याम पुत्रता सुभे, प्राप्यसी तुम यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यति। सिपाजी गोस्वामी कहते हैं कि एक साथ में यशोदा मैया के दो संतान उत्पन्न हुए थे। पहले आई थी जोग माया, इसलिए कृष्ण को अनुजा कहा गया है। पहले आई जोग माया, बाद में कृष्ण आए। कृष्ण एक साथ में आए देवकी के यहां भी और एक साथ आए यशोदा के यहां भी। जोग माया पहले आई, क्यों? कुछ ना कुछ काम था। जोग माया तीन काम की है। ब्रज में काम किया कि यशोदा के स्तन में दूध प्राप्त कराना, क्यों? कृष्ण को यशोदा का स्तन पान करना था। दूसरा काम था मोहन, मोहित कर देना सब लोगों को, ब्रजवासियों को भी और मथुरा वासियों को भी। और तीसरा काम था मारण, असुरों का विनाश करना। तो जोग माया के द्वारा भगवान ने असुरों का विनाश कराया था। तो तीन काम के लिए जोग माया आई हुई थी। कहते यथा अहम अंश भागे न देवक्याम पुत्रताम सुभे, क्या सुंदर बात है, पुत्रताम। भगवान किसी के बेटा नहीं हो सकते हैं, भगवान भगवान है, लेकिन भगवान कहते मैं पुत्रता को प्राप्त करूंगा। भगवत्ता नहीं रहेगी, क्या रहेगी? पुत्रता रहेगी। जैसे पुत्र व्यवहार करते हैं वैसे मैं व्यवहार करूंगा, तो मैं पुत्रताम है। भगवान कहते हैं पुत्रताम सुभे, प्राप्त से मैं प्राप्त करूंगा, मैं पुत्र का सब गुण प्राप्त करूंगा, पुत्र के रूप में। पुत्रताम सुभे प्राप्स्यामी, मैं यहां देवकी के यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। और तुम त्वम यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यति। अब नंद पत्नी और यशोदायाम दो शब्द कहने की जरूरत क्या है? ठीक वैसे ही जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं उखल बंधन लीला में, एकदा गृहदासिषु यशोदा नंद गेहिनी, जसोदा भी शब्द आया हुआ है और नंद गेहिनी भी शब्द आया हुआ है। वैसे ही यहां पर जसोदायाम नंद पत्नयाम दोनों शब्द क्यों आया हुआ है? अरे नंद पत्नी यशोदा तो है ही ना, नंद गेहिनी यशोदा तो है ही, फिर यशोदा का नाम लेने का जरूरत क्या है? तो भगवान यहां पर आचार्य लोग कहते हैं कि यशोदा जी अडर नर नहीं है, यशोदा जी को देख करते हैं, यशोदा जी सबको जस देने वाली है, या कृष्ण जिनको जस देने आने वाले हैं वे यशोदा हैं, कृष्ण उनको जस देंगे या यशोदा सबको जस देगी जिनके चलते कृष्ण आएंगे। तो दोनों शब्द में कहें यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यसि, तुम नंद बाबा के पत्नी जो यशोदा जी हैं उनके यहां तुम आना। भगवान ब्राइब करते हैं जोगमाया को, ऐसे यहां पर जोगमाया को चाहिए नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि सब लोग माया ऑलरेडी यहां पर माया देवी का प्रभाव है, माया लोक है, तो माया के श्री मूर्ति का स्थापना भगवान करना चाहते हैं। इसलिए ये दो श्लोक को मैं एस्केप करूंगा, बल्कि तीन श्लोक 10, 11 और 12, इसमें बेसिकली जोग माया को भगवान कहे हैं कि तुम जाओ मनुष्य लोग तुम्हारा पूजा करेंगे, और किस किस रूप से तुम्हारा पूजा होगा, किस किस नाम से तुम जानी जाओगी, ये सब वर्णन किया गया है इस तीन श्लोक में। अब चलते हैं श्लोक संख्या 13, 14 और 15 पर और वहां हम समाप्त करेंगे। अब देखिए 13वां, गर्भ संकर्षणा तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोकरमणात् बलम बलवत् युक्षयात्। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं श्लोक संख्या 8 से, जिस श्लोक संख्या 8 में बताया गया है कि देवकी के जठर में मेरे धाम अभी हैं और उनको अच्छा तरह से निकाल करके और रोहिणी के उदर में तुम्हें स्थापित करना है। अब भगवान कहते हैं गर्भ संकर्षणा तुम उस गर्भ को सन्निकृष्ट करोगे, खींचोगे, तम वही वही मतलब निश्चय ही, प्रायु मतलब प्राय, संकर्षणम भुवि वे संकर्षण नाम से पृथ्वी पर प्रख्यात होंगे। संकर्षण का ओरिजिनल नाम है, संकर्षण जी हैं, वही संकर्षण आए हुए हैं, लेकिन चूंकि आकर्षित होगा खींचा जाएगा इसलिए उनका नाम लोग इस संसार में संकर्षण के रूप में जानेंगे। एक नामकरण। दूसरा नामकरण कहते हैं रामेति, राम इति, बहुत से नाम है इसमें, राम इति, राम नाम से जाने जाएंगे। राम शब्द का अर्थ क्या होता है देखिए, राम शब्द में तीन शब्द है र और म। जो र है वह अग्नि का बीज मंत्र है और अग्नि का काम है जलाना, तो राम शब्द में केवल र कहने से, राम कहने जाकर र कहेंगे तो हमारे जितने भी कर्म फल हैं वो जल करके राख हो जाएगा। जो अशब्द है वो सूर्य का बीज मंत्र है और सूर्य का काम है प्रकाश फैलाना। तो जब कर्म फल खत्म हो चुका है तब पता चलेगा भाई एक गलत चीज है और एक सही चीज है। रात में दिखाई नहीं पड़ता, दिन में दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश में, तो ज्ञान उत्पन्न होगा और वह ज्ञान उत्पन्न होगा बलराम जी के कृपा से। और म जो है वह चंद्रमा का बीज मंत्र है और चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना। तो जो व्यक्ति को राम कहेगा उसके सब कर्म फल जल करके राख हो जाएंगे, उसे ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। रमति इति राम, जो सम्य रमण करें आनंद देने के लिए वे हैं राम। रामेति लोक रमणात्, वाह क्या सुंदर सब सुखदेव गोस्वामी चुने लोक रमणात्। अरे जो राम का नाम लेगा लोक में कोई हो, चाहे कुत्ता हो गद्दा हो बंदर हो पशु पक्षी हो, कोई भी राम का नाम लेगा उसे आनंद आएगा, चाहे हनुमान जी हो चाहे काकभुसुंडी हो चाहे गरुड़ जी हो, कोई भी राम का नाम लेगा। लोक, लोक मतलब जहां लोग रहते हैं, ये मनुष्य से ही नहीं लेना देना है, लोक लोक मतलब सब प्राणी। लोक रमणाम, सबको आनंद देने वाले हैं, किसी भेदभाव सब भेदभाव को छोड़ करके। रामेति लोक रमणात् बलम बलवत् क्षयात्, और बल में बलवान हूं इसलिए उनको लोग बलराम कहेंगे। ठीक यही बात गर्गाचार्य जब नामकरण कर रहे थे तो वो भी यही दो बात राम बलराम और संकर्षण का नामकरण किए हैं, वो बल और राम दोनों को जोड़ दिए हैं, बलराम कर दिए हैं, यहां भी वही है। अब आगे देखिए श्लोक 14 कहते संदिष्टै भगवतः तथा इति तथेति इति तद्वचः। जैसे भगवान संदिष्टै का अर्थ होता है जो जो भगवान ने कहा जोग माया उसको यथावत समझ गई। हम लोग नहीं समझ पूछते हैं, हमें ये है कंडीशनिंग लाइफ। मैं कह रहा हूं संदीपनी प्रभु यह काम करना है, जब मैं संदीपनी प्रभु कह दिया कि क्राउड कंट्रोल ऐसे करना है तो मेरे मन में चल रहा है कि ऐसे करना है, लेकिन वो सुन करके अपने मन के अनुसार उसी काम करेंगे। काम एक ही है लेकिन करने वाले का थॉट प्रोसेस अलग अलग है। मैं एक रूप से सोच रहा हूं वो दूसरे रूप से, काम वही हो रहा है लेकिन यहां पर जो बताया गया है सन आदिष्टई मतलब जगवान जो भगवान सोच रहे थे वही सोच जोग माया दी, ठीक एज इट इज भगवान ट्रांसफर कर दिए थे। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम कह देंगे हाँ ये काम करना है तो आप अपने अनुसार करोगे, लेकिन जोग माया में वही थॉट प्रोसेस था जो भगवान में था, यानी और सब समझ गए जोग माया। भगवता क्यों, क्यों भगवान कह रहे थे जी, भगवान के द्वारा ये बात कहा गया था हनुमान जी। तथा इसी कह करके भगवान का परिक्रमा की जोग माया। प्रतिगृहम परिक्रम्य, आचार्यगण कहते हैं बल्वाचार्य कहते हैं प्रति गृह परिक्रम्य, परिक्रमा करने का अर्थ क्या है, हम लोग परिक्रमा करते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बने रहे, आपका जो वाणी है केंद्र बिंदु हमारे जीवन का बना रहे। तो जोग माया परिक्रमा की कि मैं कहीं भ्रमित न हो जाए, दिग्भ्रमित न हो जाए, इसलिए वो परिक्रमा की भगवान को कि जो आपने कहा है वो हमारे मन में बना रहे वैसे ही। प्रतिगृह परिक्रम्य यथावत उसको पालन करते हुए भगवान का प्रतिज्ञा की गाम गता तो तथा करो, वहां आई और वैसा ही करेगी, ऐसा कहकर वो चल दी। अब यहां पर जोग माया अपना काम शुरू की। गर्भे प्रणिते देवक्या रोहिणीम जोग निद्रया अहो बिन स्रसितो गर्भ इति पौरा विचक्षसु। देखिए बलराम जी 7 महीने तक देवकी के जठर में थे। आप लोग यदि भागवतम तीसरा स्कंद का अध्याय 31 पढ़ना, जहां पर वर्णन किया गया है मोमेंट ऑफ लिविंग एंटिटी, कर्मणा दैव नेत्रेण से श्लोक शुरू होता है। उसका पांचवां या छठा श्लोक में ये आता है कि 6 महीना में जीव को भूख लगता है और जो गर्भवती स्त्रियां जो खाती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। 7वें महीना में, 6 और 7 के बीच में कॉन्शसनेस डेवलप होता है, तब उसे पेन महसूस होने लगता है और बौखला जाता है, यानी ज्ञान उत्पन्न होता है 7वें महीने में। तो बलराम जी ज्ञान स्वरूप भी हैं, इस 7वें महीने में आए हैं अपने माता जी के घर में। 6 महीने तक रोहिणी के पास थे, वहां पर सॉरी देवकी जी के पास सब काम कर लिए, अब 7वें महीने में ट्रांसफर होना है। श्रीपाद जी गोस्वामी हरिवंश से लेते हैं, जब ट्रांसफर हुआ है तब का कहते हैं, गर्भे प्रणिते देवक्या, प्रणिते जो प्रणिपात रूप से स्थित था देवकी के गर्भ में, उसको रोहिणिया जोग निद्रया सन्निकृष्य, उसको निकाली जोग माया अच्छा तरह से, और रोहिणी में जोग निद्रया। देखिए कोई कह सकता है क्योंकि एक जोग माया को कहे हैं, तो जोग माया अपना एक काम कर रही है और जोग निद्रा एक दूसरी शक्ति है जो वो भी काम कर रही है, लेकिन जोग माया के ही वो भी अंश है। जोग निद्रा का काम है, 2 काम है, या तो स्वप्न दिखाना और नहीं तो स्लंबर में डाल देना, जोग निद्रा का 2 काम है। और यह जोग माया ये दोनों काम की है। मथुरा में सब लोगों को स्लंबर में डाल दिया और गोकुल में सब लोगों को स्वप्न दिखाया, ये जोग निद्रा 2 काम किया। रोहिणी जी स्वप्न देख रही हैं 7वें महीने में, वो क्या स्वप्न देख रही हैं कि उनका गर्भ चित हो गया। मथुरा वालों को जोग निद्रा सुला दी है स्लंबर में, देवकी को पता भी नहीं चला कि हमारा गर्भ चला गया, लूट गई मैं, सन्निकृष्य निकाल दिए, पता नहीं चला, वो सो गई थी स्लंबर में, पता नहीं चल रहा था। लेकिन रोहिणी देख रही थी, वो देख रही है कि मेरा गर्भ कोई खींच रहा है, और रोहिणी तड़फड़ा करके बिछावन से बेड से उठी और पकड़ने का प्रयास करी, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। और उस समय जोग निद्रा, उसी बात को जी गोस्वामी लिए हैं, जोग निद्रा रोहिणी पर काम की कि सुला दी कुछ समय के लिए, और फिर रोहिणी जी स्वप्न देख रही है, क्योंकि ट्रांसफर करना था ना, तो उस समय सो गई ट्रांसफर के समय एनेस्थीसिया, फिर स्वप्न देख रही है मेरा गर्भ है। और इस प्रकार से जोग निद्रा ही दिखाई कि ये गर्भ कौन है। तो रोहिणी जी को मालूम था कि उनके गर्भ में कौन है, ये बलराम जी है। तो यह जो बात है, गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी जोग निद्रया, इसी बात को जोग निद्रया को लेकर के हरिवंश से जी गोस्वामी किए हैं। अब जब सुबह हुआ कहते हैं, अहो विसंस्तो गर्भ इति पौरा चक्षुषु, पौरा जितने भी पूर्ववासी थे, यानी मथुरापुरी वाले, वृंदावन वाले नहीं, मथुरा गोकुल वाले नहीं, पूरा पौरा मतलब पुरी वाले, मथुरापुरी वाले जितने लोग थे वे आपस में बात करने लगे। न्यूज तुरंत ब्रॉडकास्ट हो गया कि देवकी का गर्भच्युत हो गया, देवकी गर्भच्युत हो गया। प्रश्न उठता है कि भगवान ने काम क्यों कराया, देवकी का गर्भ क्यों च्युत हुआ, आप ही लोग सोचो। पहला नंबर तो बलराम जी देवकी के पुत्र नहीं हैं, बलराम जी किनके पुत्र हैं? रोहिणी के। इटर्नली वो तो कुछ काम के लिए आए थे। यदि बलराम जी देवकी के गर्भ में ही रहते और उनका आविर्भाव होता तब क्या होता? कंस आता मारने के लिए ना, क्या कंस मार पाता? कंस नहीं, जो ही स्पर्श करता कंस गया था काम से, तो फिर भगवान आते क्या? तो काम खत्म हो गया ना, तो भगवान का जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान आना चाहते थे। भगवान ने कहा है यथा अमन सभागे न देव क्या पुत्रताम सुबे, मैं आऊंगा। भगवान आना चाहते हैं तो बलराम जी क्यों रास्ते का रोड़े बने? भगवान अच्छा व्यवस्था किए। एक बात यह, मान लो एक सेकेंड के लिए यदि कंस मार भी देता बलराम जी को, तब शेषनाग है ना, पृथ्वी धराशाही हो जाती, समुद्र के अंदर चली जाती, पता नहीं कंस के साथ में कहां चली जाती। तो एक दो तीन कारण है जिससे कि बलराम जी को भगवान कहे जोग माया को ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर करने का कारण क्या है? कारण होना चाहिए ट्रांसफर का ना, तो ये सब कारण है। लेकिन सुबह में जब पूर्ववासी लोग उठे तो हाय हाय कर रहे थे। पहले गर्भपात को बहुत खराब माना जाता था, ये पाप है। आजकल तो निर्लज हो गए हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी गर्भपात कराते हैं, और मूर्ख लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इतना रुपए में गर्भपात। ये पाप होगा तो कहां जाएंगे हम लोग, ये पाप है। लोग, ये है संस्कृति हमारी, 5000 वर्ष पहले लोग खेद कर रहे हैं देवकी के लिए कि हाय हाय। हालांकि देवकी देव स्वरूपा है, देव रूपिणी है। देव क्या देव रूपिणिया, देवकी देव रूपिणी है। तो वो पाप करने का सवाल नहीं होता है कि देवकी ने पाप किया इसलिए उसका गर्भच्युत हो गया, बल्कि पूर्ववासी लोग कंस को कहते हैं पापी, इतना बदमाश है, इस पापी के भय से, इस पापी के भय से देवकी देवकी का सातवां गर्भच्युत हो गया। भय से च्युत हो जाता है, गर्भच्युत हो जाता है। कोई एक उदाहरण है वो भरत जी के हरिण का है, जब शेर दौड़ा उस हरिणी के पीछे बेचारे जंप लगाई, भाई के चलते उसका अर्चित हो गया। वैसे ही मैं पिछले दिन क्लास दिया था चंवर ऋषि का, चंवर ऋषि के मां को जब पुलोमा लेकर के जा रहा था असुर, तो भय के चलते ऐसी भयभीत हो गई कि बच्चा चित हो गया, तभी तो उसका नाम पड़ा चंवन। तो भय से तो ये मथुरा वासी लोग जो थे वो कंस को कर्त कर रहे थे कि इस दुष्ट कंस के चलते, अरे कम से कम इसको गर्भ तो छोड़ देना चाहता है, मारना है तो मारता ही थे, तो मारिए लिया था, तो ही मारना क्या तकलीफ था। लेकिन इतना भय टॉर्चर किया होगा देवकी को, गांव का पंचायती तो आप लोग जानते हैं, जैसे ग्राम कथा कहते हैं, तो पूर्ववासी लोग इस प्रकार से करते हैं। अहो विसंस्कृत गर्भ इति पौरा विचुक्रसु, विचुक्रसु आपस में विचार कर रहे थे, गाम कथा कर रहे थे, क्यों कारण है, कारण क्या हो सकता है। देवकी पर लांछन नहीं लगा रहे थे कोई, क्योंकि देवकी देव स्वरूपा है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 8 से 15 के बीच में बलराम जी के आविर्भाव का वर्णन किया गया है। मैं कहा था कि बलराम तत्व का थोड़ा वर्णन करूंगा, बलराम जी के खानदान का वर्णन करूंगा, लेकिन समय तो आज है नहीं, तो आज मैं यहीं पर कथा का विराम कर रहा हूं कि अब देवकी से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी आ गए हैं, अब वहां पर क्या होता है वो बात अलग है। एक बात और बता दूं कि बलराम जी जन्म से अंधे थे, जब बलराम जी का आविर्भाव हुआ तो आंख नहीं खोले थे, न तो बोलते थे और ना तो देख पाते थे, नहीं देखते थे बोलते हैं, सॉरी गूंगे थे बोलते नहीं थे। राधा रानी जन्म से पंडित थे, बलराम जी गूंगे का काम कर रहे थे। प्रथम बार वे बोले आनंद वृंदावन चंपू में, गोपाल चंपू में ही वर्णन है, आनंद वृंदावन चंपू में है, कि किस प्रकार से जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो बलराम जी यशोदा जी के प्रसव गृह में आए और कृष्ण को देख करके बात करने लगे कृष्ण से। हंस रहे थे, यशोदा के घर पर अपना कान रख करके सुन रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। और बोले कब, जब वे देखे कृष्ण को, कृष्ण से बात हुआ तब। इसका वर्णन अच्छा तरह से जीव गोस्वामी किए हैं कि कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो उनकी जो धाय थी वो सो गई थी। यशोदा तो सो ही गई थी, धाय भी सो गई। धाय बहुत भयभीत थी, जब बालक जन्म लिया उसका नाभि, धाय काटती है ना, तो काटा नहीं, नाभि था ही नहीं, जब देखा तो उसमें तो बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा था, तो बेचारी भयभीत हो गई थी कि अब मेरा नंद बाबा क्या करेंगे। और वहां वर्णन किया गया कि इसलिए कि बलराम जी आ रहे थे तो सो गई थी और बलराम जी कृष्ण से बात किए थे। यानी और कथाएं जो है, बड़ी सुमधुर कथा है बलराम जी की, बाद में कहा जाएगा, सुना जाएगा। तो मैं अपने कथा का विराम दे रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन कमेंट? माइक ना रामरू प्रभु को
हरे कृष्णा। In 2.8 Devakyam Jatre Garbham, Srila Prabhupada quoted Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, and he says that Mayatatam Idam Sarvam Jagadavyakta Murtina. Even though Krishna enters everywhere, all the world, by his impersonal form, but he is not touched by it.
He is not touched. Yes.
So, saying that, so Vishwanath Chakravarti Thakur says, that in the same way, being the internal potency of Krishna, Devaki also in the same situation. So there is no question of these Shadgarbhas contaminating Devaki's womb. So where is the question of cleaning if it is not dirty?
यदि आप थोड़ा ध्यान से सुने होंगे तो मैं कहा था कि एक आचार्य मजाक में कह रहे थे, हुमर तो होना चाहिए ना साधुओं में कम से कम, तो आचार्य हैं वो हुमर से कह रहे थे, वो देवकी के ऊपर कटाक्षाप नहीं कर रहे थे, असुरों के प्रवृत्ति को बता रहे थे कि असुर जहां आते हैं वो गंदा रहते हैं और बलराम जी क्रिया शक्ति हैं, तो काम है क्रिया करना, तो सफाई कर लो। इन जोकिंग मूड में कह रहे थे, मैं एक क्लियर किया पहले, आई नहीं डरते। यस
हरे कृष्णा। लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा ये है कि जब देवकी के जठर क्रम में बलराम जी थे और जोग माया ने जब बलराम जी को वहां से खींचा तो रोहिणी के क्रम में उदर गर्भ का प्रयोग किया गया है, यह जठर गर्भ है उन्हें उदर गर्भ है, तो रोहिणी के भी गर्भ में तो जठर था, तो इसका भाव क्या है? मतलब एक तरफ जठर गर्भ है, एक तरफ है उदर गर्भ है।
तो आप अपने प्रश्न पर ही ज्यादा ध्यान कर रहे थे, मैं बोल रहा था उसका ध्यान नहीं किया। मैं कहा कि बलराम जी अग्नि स्वरूप हैं, ये आई डोंट नो बिरावा गोस्वामी के एक गोस्वामी बतलाते हैं कि वे अग्नि स्वरूप हैं, इसलिए उनका निवास स्थान जठर था। यदि गर्भ में होते तो गर्भ को जला सकते थे बलराम जी, लेकिन और देवकी जी उसको सहन नहीं कर पाती, रोहिणी कर सकती है, क्योंकि इटर्नली उनके वो पुत्र हैं, उनको हैबिट है, जो मिर्चा नहीं खाता है उसको थोड़ा मिर्चा पसीना आने लगता है, जो खाता है 5-6 खा लेगा तभी चलेगा, तो रोहिणी जी पर उसका असर नहीं पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? और रामरूप प्रभु ने ठीक कहा कि बलराम जी और कृष्ण का कोई संपर्क नहीं था गर्भ से, कोई बोथ ऑफ देयर ट्रांसजेंडर, दे आर नॉट लाइक स्मॉल चाइल्ड, स्पेशली कृष्ण का। यदि कृष्ण का जन्म देखा जाए, वर्णन किया गया कैसे भगवान नंद बाबा के मन में आए और फिर वहां से यशोदा के मन में ट्रांसफर किया, वैसे ही सेमिनल ट्रांसफर नहीं हुआ था, मेंटल ट्रांसफर हुआ था, वैसे ही बसते और देवी का भी। और कोई प्रश्न?
हाँ सर, दूसरी जी कहते हैं कि कहीं कहीं वसुदेव जी उसी भागवत में वसुदेव जी की 17 पत्नियों का वर्णन है।
कितने?
17 है।
तो और बताइए हम।
नहीं नहीं, उसी भागवत में ही वर्णन है।
तीन और कौन है मुझे मालूम,
कोई होगा इसलिए मैंने पूछा।
हरिवंश में 14 का वर्णन किया गया है, जिसमें से 7 कुरुवंशी थी, कौरव कुल की थी, और 7 जो थी वह इनके उग्रवंश के देवक की पुत्रियां थी, और ये 2 दासियां थी देवकी की, जो साथ में आई थी। बताइए और होगा तो। और कौन है?
भागवत में वर्णन है, प्रभुपाद जी से लिखा है, उस भाष्य में है।
किस में?
भाष्य पढ़ करके मैंने बोला इसे।
अच्छा, हमको बताइए अकेला
से। ठीक,
बताइए कहाँ पर? हरिवंश में 14 का वर्णन है। और कोई प्रश्न? यस, माइक माइक, हम यस प्रभु को माइक दो।
हरे कृष्णा सर, राम को आप व्याख्या किए र और म, ऐसा कृष्ण को क्या, ऐसा क्या कर?
कृष्णा, कृष्ण मतलब खींचना, र मतलब आनंद, जो आनंद को खींच कर लाता है उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण के पास रहो, आनंद चाहिए ना, तो बोलो हरे कृष्णा।
और राम को और एक बार दोबारा बता दी। राम र और म का सर व्याख्या कर दीजिए।
बता दिया ना, रह जो है अग्नि का बीज मंत्र है, अग्नि काम है जलाना, राम कहने से हमारा पाप खत्म हो जाएगा, और सूर्य का बीज मंत्र है प्रकाशित करना, ज्ञान हो जाएगा सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मंगलावती आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए पता चल जाएगा उससे। और म जो है वो शशि का या चंद्र का बीज मंत्र है, और चंद्रमा काम है शीतलता प्रदान करना, तो जीवन में शांति रह जाएगी। लेकिन आनंद चाहिए तो कृष्ण के पास जाओ, शांति से काम नहीं चलेगा, डिप्रेशन में चले जाओ कभी कभी, नहीं नहीं जाओगे, लेकिन आनंद चाहिए तो कृष्ण के पास। यस, और किसी का प्रश्न? इधर जल्दी जल्दी, भूख लगा है, जल्दी जल्दी माइक बढ़ाओ इधर, और आगे 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 हाथ रहो भाई। हाँ ठीक है, पूछ लो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपने बताया था कि साधु का एक आभूषण है कि दया करना, तो नारद जी ने जो किया था कौन उसको बताया कि ये सब उसको मार दो जो देवकी के वो बालक था, तो वहां पर उनका दया नहीं दिख गया।
बहुत बढ़िया प्रश्न था, ये नारद जी का दया था। कैसे दया था? अरे नारद जी के कृपा से ही भगवान आए, कंस पाप किया तो भगवान आए, तो विभिन्न प्रकार का लीला किए, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, दया हुआ ना पर हम पर। उसके बाद ये 6 गर्भ, उनको श्राप था कि अपने बाप के हाथ से मारे जाएंगे, लेकिन यदि भगवान का वो उच्छिष्ट पान करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो एक समय की बात है, ये मार दिए गए कंस के द्वारा। एक समय द्वारिका में 9 वृंदावन है, वहां पर देवकी जी की बड़ी इच्छा हुई कि उन 6 पुत्रों को देख लूं। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बड़ा पावरफुल है, वो संदीपनी मुनि का मरा हुआ बच्चा ला दिया, तो उनके मन में इच्छा हो गई कि हमारे जो बेटे 6 मर गए हैं, क्या मैं उनको देख सकती हूँ जिसे कंस मारा है? उनको मालूम नहीं था कि श्राप लगा हुआ है, क्या देख सकती हूँ? तो भगवान ला दिए 6 पुत्रों को। जब ला दिए तो जब देवकी को देखते हैं उनके आश्रम से दूध आने लगा, तो भगवान जाकर तुरंत पीने लगे। आचार्यगण कहते हैं भगवान 2 कारण से पिए, एक तो उन लोगों का उद्धार करना था उचित करके, उचित लेकर के, दूसरा भगवान ने कहा कि मैया सबसे छोटा मैं हूं तो पहले मेरा अधिकार है, मुझे पहले पीने दो। तो भगवान पी लिए, बाद में वो लोग पिए तो उनका उद्धार हो गया। यस, माइक दो.
हरे कृष्ण. प्रभु जी, नौवे श्लोक में अंश भागेन के शब्द है.
अथवा
अंश भागेन, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने अंश भाग में आऊंगा. पर हम देखते हैं तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के श्लोक है कि हिते चा अंश कला पुंसम, बाकी सब अवतार भगवान के अंश है. पर यहाँ पे भगवान कह रहे कि ये जो अवतार होगा वो भी मेरा अंश.
हाँ, मेरा अंश होगा.
तो लाइक
भगवान नहीं है, अंश. जितने भी तीसरे अध्याय में आप पढ़ोगे हिते चा अंश कला पुंस, उसमें सबका नाम वर्णन किया गया. यहाँ तक कृष्ण और बलराम का भी नाम वर्णन किया गया है. लेकिन ये सब वर्णन करने के बाद कहते हैं एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. ये जितने नाम गिनाए गए हैं ये उन पुरुष के कला और अंश हैं, लेकिन उनमें से जो कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान है.
तो भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो अवतार आएगा वो अंश है?
हाँ, अंश. वसुदेव संकर्षण अनुरुद्ध प्रद्युम्न अंश है उनके ना. हाँ, नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है. देवकी पुत्र है अंश, यशोदा नंदन जो है स्वयं भगवान हैं. इसीलिए जब ये लेकर गए वसुदेव जी तो उनमें समाहित हो गए, एक हो गए. यस हनुमान जी, यू कैन गिव कमेंट टुडे. नहीं, क्वेश्चन.
हरे कृष्णा. तो बलराम जी देवकी के गर्भ में क्यों गए कि वहां जाने पर तो मरने का खतरा था, और डायरेक्ट रोहिणी के गर्भ में क्यों नहीं गए?
वाह, हनुमान कहां से प्रश्न खोज कर लाए. देखिए, पहला नंबर पूछिए. भगवान लीला बिहारी हैं, अब से है नहीं, शुरू से ही हैं. ये भगवान का लीला था कंस को भ्रमित करने के लिए. सातवां गर्भचित हो गया तो देवकी कितने संतान हुए? सात हुए. एक च्युत हो गया ना. जो च्युत हो जाता है आपको, आपको नहीं. यदि किसी के पास पांच बच्चे जन्म लिए, तीन मर गए, कोई पूछे कितने बच्चे हैं तो कहें दो बच्चे हैं. जो जीवित है उसी को बोलेंगे ना, जो मर गया तो उसे नहीं बोलेंगे ना, उनको नहीं बोलेंगे. तो भगवान कंस को भ्रमित करने के लिए यह काम किए कि ये जो आठवां होगा वो सातवां होगा कि आठवां होगा. सातवां तो खत्म हो गया, तो जो कृष्ण आने वाले हैं वो सातवें होंगे कि आठवें होंगे? कौन होंगे?
आठवें.
सातवां होंगे ना. मरे हुए का थोड़े नाम लिया जाता है यार, तुम ही बात करते. सातवां होगा ना. तो भ्रमित करने के लिए एक बात यह बात था. दूसरा बात यह था कि बलराम जी को आना ही था, तो भगवान ने सोचा पहले वहां से होकर के यहां आए, वहां भी देख लें क्या चल रहा है उधर, उसके बाद आए. और ये भी भ्रमित करने के लिए कि आठवां जो है वो लड़की या लड़का है भी नहीं. तो कृष्ण सातवें हो गए और जोग माया आठवीं हो गई. तो कंस तो इसीलिए नहीं मारना चाहता कि देवकी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि छोड़ दो भैया, ये तो तुम्हारी भगनी है, ये तो लड़का भी नहीं है. लेकिन नारद जी पक्का मंत्र चढ़ा दिए थे कि विष्णु कुछ भी कर सकता है, पहले लड़की बने के बाद लड़का बन जाएगा, इसीलिए मारना चाहता था. ऑलराइट, विल स्टॉप हियर. एनी अदर क्वेश्चन? जय ग्रंथराशिम भागवतम की जय. श्री श्री दाऊ जी की जय. गौर हरि प्रेमानंदे हरि गौर.